आज है 20 मार्च दिन मंगलवार। नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। हिंदी के जाने माने साहित्यकार केदारनाथ सिंह का निधन।
महान शब्दों और महान वादों पर दो मिनट का मौन। भाइयों और बहनों, इस महान विशेषण पर दो मिनट का मौन।
भारतीय राजनीति में तीसरा मोर्चा बनने से किसे होगा फायदा?
आज के माहौल में अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो वो थर्ड फ्रंट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बीजेपी को फायदा कर सकता है।
लिंगायत समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा देने की सिफारिश।
इट वोंट अफेक्ट एनी अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज एग्जिस्टिंग। एजुकेशनल बेनिफिट्स आर गिवन इन द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ओनली।
खबरें होंगी विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिनेश उप्रेती से। हिंदी के वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह का कल दिल्ली में निधन हो गया। वो 83 वर्ष के थे। केदारनाथ सिंह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। पेट में संक्रमण की शिकायत के बाद इलाज के लिए उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती किया गया था। साल 2013 में केदारनाथ सिंह को साहित्य के सबसे बड़े सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग्स तस्करों को कड़ी सजा देने की वकालत की है, जिसमें मौत की सजा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अमरीकी जनता को नशीले पदार्थों की लत से बचाए जाने की जरूरत है। ट्रंप ने कहा कि ड्रग डीलर्स हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं, लेकिन कुछ समय जेल में बिताने के बाद छूट जाते हैं। उन्होंने कहा कि दवा कंपनियों को और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा,
If we don't get tough on the drug dealers, we're wasting our time.
अगर हम ड्रग डीलर्स के खिलाफ सख्ती नहीं बरतते हैं तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बस इतना याद रखें, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और इस सख्ती में मौत की सजा भी शामिल होनी चाहिए। अमरीकी राज्य एरिजोना में एक ड्राइवरलेस कार की टक्कर में एक महिला की मौत हो जाने के बाद उबर ने ड्राइवरलेस कार की टेस्टिंग निलंबित कर दी है। माना जा रहा है कि खुद ब खुद चलने वाली कार की टक्कर से होने वाली ये पहली मौत है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। करोड़ों यूजर्स का डाटा चोरी होने की खबरों का असर सोशल मीडिया फर्म फेसबुक के शेयरों पर पड़ा है। कल अमरीकी शेयर बाजारों में फेसबुक का शेयर लगभग 7% गिरकर बंद हुआ। आरोप है कि साल 2016 में अमरीका के राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने वाली कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिकल ने फेसबुक के 5 करोड़ से अधिक यूजर्स की निजी जानकारियां चुरा ली थीं। एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति चुने गए व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो देश की सैन्य ताकत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह के हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते। क्रेमलिन में अपने विरोधियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह अन्य देशों से सकारात्मक बातचीत के लिए तैयार हैं। पुतिन ने कहा, लेकिन सब कुछ अकेले हम पर निर्भर नहीं करता। जैसा कि प्यार में भी होता है, दिलचस्पी दोनों तरफ होनी चाहिए, नहीं तो प्यार नहीं होगा। जहां तक हमारी बात है तो हम अपने पार्टनर्स के साथ सभी विवादों को राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संकट से जूझ रहे पश्चिम अफ्रीकी देश माली में चल रहे संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में कनाडा भी शामिल होगा। कनाडा ने कहा है कि वह माली में अपने सैनिक और मालवाहक हेलीकॉप्टर भेजेगा। 1994 में रवांडा में हुए जनसंहार के बाद कनाडा पहली बार अफ्रीका में किसी सैन्य मिशन का हिस्सा बनने जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी कंपनियों को के वेनेजुएला के साथ उसकी क्रिप्टोकरेंसी पेट्रो में कारोबार करने पर रोक लगा दी है। ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला इस क्रिप्टोकरेंसी से अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से बचने की कोशिश कर रहा है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने पोलैंड से आग्रह किया है कि शरणार्थियों के मामले में वो यूरोपियन यूनियन की नीतियों का पालन करे। पोलैंड की यात्रा पर गई मर्केल ने कहा कि यूरोपियन यूनियन को रूस और चीन के लिए समान नीति लागू करनी चाहिए। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत संदीप सोनी के साथ।
हर योजना पर, हर विकास पर दो मिनट का मौन, इस महान शताब्दी पर, महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर दो मिनट का मौन।
ये आवाज है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के जाने माने साहित्यकार केदारनाथ सिंह की। केदारनाथ सिंह का कल दिल्ली में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। हिंदी साहित्य में थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति केदारनाथ सिंह की कलम से परिचित होगा। फिर भी जो लोग केदारनाथ सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित नहीं हैं, उनके लिए मेरे सहयोगी दिनेश उप्रेती ये रिपोर्ट लेकर आए हैं।
जाऊंगा कहां, रहूंगा यहीं किसी किवाड़ पर, हाथ के निशान की तरह पड़ा रहूंगा, किसी पुराने ताखे या संदूक की गंध में छिपा रहूंगा, मैं दबा रहूंगा किसी रजिस्टर में अपने स्थायी पते के अक्षरों के नीचे। मशहूर कवि और जाने माने साहित्यकार डॉक्टर केदारनाथ सिंह की यह पंक्तियां बताती हैं कि जमीन से उनका जुड़ाव किस कदर था। उनके निधन से साहित्य और लेखन जगत में शोक छा गया है। केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। काशी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उनका बहुत गहरा जुड़ाव रहा। आरंभिक शिक्षा को छोड़कर सारी पढ़ाई उन्होंने बनारस में ही की। यहीं उन्हें त्रिलोचन और नामवर सिंह जैसे दिग्गज साहित्यकारों का सानिध्य मिला। जीवन की तरह उनकी कविता में बनारस, उसकी स्मृतियां और छवियां बार बार प्रकट होती रहीं। उन्होंने बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय से साल 1956 में हिंदी में एमए और वर्ष 1964 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। केदारनाथ सिंह सिर्फ कविता लेखन में नहीं बल्कि अकादमिक जगत में भी सक्रिय थे। केदारनाथ सिंह को उनके साहित्यिक योगदान के लिए वर्ष 2013 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो भारत का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले वे हिंदी के 10वें रचनाकार थे। उन्होंने कविता व गद्य की अनेक पुस्तकें रची। ज्ञानपीठ के अलावा उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास पुरस्कार सहित कई सम्मान भी मिले। केदारनाथ सिंह की कविता में गांव और शहर का द्वंद्व साफ नजर आता है। जटिल विषयों पर बेहद सरल और आम भाषा में लेखन उनकी रचनाओं की खासियत है। उनकी सबसे मशहूर लंबी कविता बाग है, जो मील का पत्थर मानी जा सकती है। केदारनाथ सिंह के प्रमुख लेख और कहानियों में मेरे समय के शब्द, कल्पना और छायावाद, हिंदी कविता बिंब विधान और कब्रिस्तान में पंचायत शामिल हैं।
साहित्य वो विधा है जहां साहित्य की रचना करने वाले भले ही इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनकी रचनाएं साहित्य प्रेमियों की स्मृतियों में सदैव जीवंत रहती हैं। केदारनाथ सिंह की आवाज़ में उनका कविता पाठ हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले उनके शिष्य रहे प्रोफेसर और साहित्यकार पुरुषोत्तम अग्रवाल से ये बातचीत सुनते हैं कि वो अपने गुरु और अनूठी कविता शैली के प्रणेता केदारनाथ सिंह को किस तरह याद कर रहे हैं। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल से बात कर रहे हैं बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद।
भाई मैं तो ऐसे याद करता हूँ कि बड़ी शख्सियत तो खैर जाहिर है ना, वो थे ही, लेकिन वो मेरे टीचर भी थे। एमए में उन्होंने मुझे पढ़ाया था और मैं ये कह सकता हूँ कविता पढ़ाने का जो उनका ढंग था वो निराला था और कविता पढ़ने समझने की तमीज मुझे सिखाने वालों में उनका नाम अव्वल था। जहाँ तक हिंदी कविता का सवाल है, केदारनाथ सिंह की मौजूदगी हिंदी कविता में एक बहुत बड़ी मौजूदगी थी। उनकी पंक्तियां जो है वो आम लोगों के बीच में मुहावरे जैसी बन गई थी। मिसाल के तौर पर मेरे युग का मुहावरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। ये उनकी कविता की पंक्तियां हैं जो हिंदी में पढ़े लिखे लोगों के बीच, नौजवानों के बीच मुहावरे की तरह इस्तेमाल होती है। सप्तक से शुरू करके नई कविता पर उनका जो असर था और उसके बाद के उस पर एक पूरी की पूरी पीढ़ी जो है आप कह सकते हैं कि वो केदारनाथ सिंह की कविता से प्रभावित हुई और बहुत सारे कवि जो हैं उनके जैसी कविता लिखने की कोशिश करते रहे। केवल हिंदी साहित्य के नहीं बल्कि भारतीय साहित्य की सबसे अहम सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में उनका नाम होगा। बहुत ही शरीफ इंसान थे, बहुत ही मीठा बोलने वाले, कभी उनको मैंने सख्त लहजे में बात करते नहीं सुना इतने सालों में।
आपकी उनकी प्रिय कविता अगर आप जिक्र करना चाहें तो, जैसे बनारस कविता को बहुत माना जाता है कि
उनकी बनारस कविता है जी, उनकी कबीर पर कविता है और उनकी छोटी छोटी अनेक कविताएं हैं, बनारस कविता जो है उनकी बहुत सी कविताएं हैं। इस तरह मैं एकाएक क्या कहूँ, वो ऐसे कवियों में से थे जिनकी कोई एक या दो प्रिय कविता चुनना मेरे लिए मुश्किल है।
जैसा कि प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल कह रहे थे, केदारनाथ सिंह की किसी एक कविता का चयन करना बहुत मुश्किल है। हम भी बहुत मुश्किल से बीबीसी के खजाने से केदारनाथ सिंह का कविता पाठ अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं।
हर योजना पर, हर विकास पर दो मिनट का मौन, इस महान शताब्दी पर, महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर दो मिनट का मौन। भाइयों और बहनों, इस महान विशेषण पर दो मिनट का मौन। दूसरी कविता में पढ़ता हूँ। किसने बनाए वर्णमाला के अक्षर, ये काले काले अक्षर, भूरे भूरे अक्षर किसने बनाए, खड़िया ने, चिड़िया के पंख ने, दीमकों ने, ब्लैक बोर्ड ने, किसने, आखिर किसने बनाए वर्णमाला के अक्षर। मैंने मैंने सारे हस्ताक्षरों को अंगूठा दिखाते हुए धीरे से बोला, एक अंगूठे का निशान और एक सोखते में गायब हो गया।
ये थे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के जाने माने साहित्यकार केदारनाथ सिंह, जिनका कल देहांत हो गया।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। दक्षिण भारत की एक राजनीतिक पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति। इस पार्टी के मुखिया हैं के चंद्रशेखर राव, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी हैं। के चंद्रशेखर राव ने कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य था एक ऐसा गठबंधन बनाना जिसमें न भारतीय जनता पार्टी के लिए जगह हो न कांग्रेस के लिए। इसे तीसरा मोर्चा कहा जा रहा है। अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो उसमें कितना दम होगा, यही सवाल हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद ने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार सीमा मुस्तफा से पूछा।
नहीं, थर्ड फ्रंट आई थिंक इस बार ऑपोजिशन कई जो मेन पार्टीज हैं उन्होंने इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग उनमें है कि खाली सेकंड फ्रंट रहे हैं एंड वो लोग कह रहे हैं कि जो थर्ड फ्रंट का मूव है बीजेपी सपोर्टेड मूव है। ये जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं जो मिले थे सोनिया गांधी के डिनर में जिसमें 20 पार्टीज थी, आरजेडी और लेफ्ट और डीएमके और वगैरह वगैरह, तो वो लोग कह रहे हैं, वहाँ के एमपीज बाद में हम लोग से कह रहे थे कि हम लोग सेकंड फ्रंट तक सीमित रहना चाह रहे हैं और बीजेपी कोशिश कर रही है थर्ड फ्रंट के लिए।
ये जो कहा जा रहा है कि ये जो तीसरा फ्रंट बनेगा, तो क्या ये लगता है कि ये इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा?
जी, ये मानना है उन ऑपोजिशन पार्टीज का जो सोनिया गांधी के, तो ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है इस बात में। जो मेन पार्टीज हैं वो एक ही फ्रंट जा रही हैं सेकंड फ्रंट वन टू वन कॉन्टेस्ट के लिए, और थर्ड फ्रंट कुछ लोग कह रहे थे उनमें से कि इसको आप लोग को देखना चाहिए, बट इट इज अ बीजेपी थिंग। आज के हालात में जितनी मीटिंग्स हो रही हैं उनको भी सीरियसली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार है 4 ईयर्स में जिसमें ये ऑपोजिशन एक दूसरे से बात कर रही है, तो हर आदमी दूसरे से बात कर रहा है। इसमें ये बातचीत जब खत्म, ये दौर खत्म होगा कर्नाटक इलेक्शन तक, तब कुछ पिक्चर क्लियर होगी कि एक फ्रंट होगा, दो फ्रंट होंगे, तीन फ्रंट होंगे, किस तरीके से अलायंसेस होंगे।
अगर ये मूर्त रूप लेता है, अगर एक थर्ड फ्रंट बनता है तो
आज के माहौल में अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो वो थर्ड फ्रंट कैन कट इनटू सेकंड फ्रंट वोट, और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बीजेपी को फायदा कर सकता है। पर अभी ये बहुत अर्ली है ये कहना, क्योंकि थर्ड फ्रंट वो भी पार्टीज हो सकती हैं जो दोनों एंटी बीजेपी और एंटी कांग्रेस हैं, और जो कांग्रेस से तालमेल नहीं करना चाहती हैं, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है कि ये जो पिक्चर है इसको डेफिनेटिव कहे तो हम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे। ये जनरली अभी बहुत फ्लूइड सिचुएशन है, हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रही है, ये पहली बार हो रहा है इन 4 इयर्स। तो जब तक ये पूरी बातचीत नहीं होगी और रिजॉल्व नहीं होगी, तब तक कहना कौन किसके साथ, ये जरा सा मुश्किल है। ये जो बातचीत हो रही है इससे एक ही चीज है कि फाइनली ऑपोजिशन के अंदर एक ये फीलिंग है कि अगर ये लोग अलायंसेस करें, एक दूसरे के साथ आए, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफीटिंग द बीजेपी।
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बिना तीसरे मोर्चे की संभावना पर ये थी वरिष्ठ पत्रकार सीमा मुस्तफा। और अब बात कर्नाटक की। आप जानते हैं कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले कर्नाटक की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने लिंगायत समुदाय को अलग अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय के तौर पर मान्यता देने के लिए अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले को राज्य में भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर बड़ी ही बड़ी गहरी चोट माना जा रहा है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
हर किसी को पता था कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए तुले हुए हैं। कांग्रेस सरकार में लिंगायत समुदाय से जुड़े हुए विभिन्न मंत्री अपने समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने की कोशिशें कर रहे थे। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने से क्या लाभ होगा? लिंगायत आंदोलन समिति के कन्वीनर और कर्नाटका के पूर्व अपार मुख्य सचिव डॉक्टर एसएम जामदार ने बीबीसी को बताया,
इट वोंट अफेक्ट एनी अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी।
इस निर्णय से दूसरे अल्पसंख्यकों के सुविधाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शैक्षिक लाभ सरकार के तरफ से किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को दिया जाता है, और ये लाभ अब तक सिर्फ धनी लिंगायतों को जाता था। इस निर्णय से ये लाभ आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को जाएगा। ये थे डॉक्टर जामदार के शब्द। अगर कर्नाटका सरकार की सिफारिश को केंद्र सरकार या केंद्र अल्पसंख्यक समिति हरी झंडी दिखाती है, तो इसका लाभ सिर्फ कर्नाटका में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में भी मिलेगा, क्योंकि इन राज्यों में भी लिंगायत समुदाय के लोग बसे हैं। लिंगायत समाज की पहली महिला जगत गुरु माते महादेवी बताती हैं,
टुडे वी आर वेरी वेरी हैप्पी।
हमें बहुत खुशी हुई है कि सिद्धरामैया की सरकार ने यह निर्णय लिया है। हम बहुत सालों से यह मांग कर रहे हैं कि हम एक जाति नहीं हैं, लेकिन जैनिज्म और सिखिज्म जैसे लिंगायतिज्म भी एक धर्म है। ये थे माते महादेवी के शब्द। राजनीतिक तौर से देखें तो इस निर्णय से कांग्रेस पक्ष को कितना फायदा होगा, खासकर जब लिंगायत समुदाय करीब 2 दशकों से बीजेपी को ही वोट करता आया है। हमने यह सवाल राजनीतिक विश्लेषक और लिंगायत समुदाय के एक्सपर्ट महादेव प्रकाश से पूछा।
इन साउथ कर्नाटका देयर आर 2 प्रोमिनेंट लिंगायत वीरशैव लीडर्स।
हमें नहीं लगता कि इस निर्णय से कांग्रेस को ज्यादा फायदा होगा। दक्षिण कर्नाटका में 2 प्रमुख मठ सुत्तूर मठ और सिद्धगंगा मठ कांग्रेस के खिलाफ है, क्योंकि उनको लगता है कि सिद्धरामैया लिंगायत समुदाय का विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर कर्नाटका में कांग्रेस को सीमित तौर से फायदा होगा। ये थे महादेव प्रकाश के शब्द। बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस सरकार समाज का विभाजन कर रही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों पक्ष में ऐसे नेता हैं जो मानते हैं कि इसका असर थोड़े हद तक तो होगा ही। कारण ये है कि जो पिछड़े तबके के लोग लिंगायत समुदाय में जमा हुए वो इस निर्णय से खुश हैं। बहरहाल ये भी कहना इस समय मुश्किल है कि उनका रुख अगले 6 या 7 हफ्तों में किस तरफ पलटेगा। सिद्धरामैया ने इस विषय पर एक बड़ा दांव खेला है, उसी तरह जैसे 1996 में सीताराम केसरी ने देवेगौड़ा की सरकार से समर्थन वापस लिया था ताकि कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिले। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
और आइए इसी के साथ दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों की सुर्खियां क्या बयां कर रही हैं लगे हाथ जान लेते हैं। दिनेश उप्रेती कई अखबारों के साथ स्टूडियो में मेरे ठीक सामने बैठे हुए हैं।
जी संदीप जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल से माफी मांगने की खबर को कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापा है। इंडियन एक्सप्रेस ने आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से कहा है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी उनके खिलाफ चल रहे ऐसे ही कम से कम 20 और मामलों में माफ़ी मांग सकती है। आपने कथित तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था नितिन गडकरी पर, उन्होंने तब एक सूची जारी की थी जिसमें नितिन गडकरी का नाम शामिल था कि ये भ्रष्टाचार लोगों की भ्रष्टाचार,
लेकिन वो कोई सबूत नहीं दे पाए।
हाँ, उनकी तरफ से मनीष सिसोदिया का बयान आया है कि हम पार्टी जो है वो किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते,
इससे बेहतर होगा कि
हम माफ़ी मांग लें। भागलपुर में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत और 8 अन्य के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये खबर छपी है इंडियन एक्सप्रेस में। खबर के मुताबिक दंगा करने, हिंसा फैलाने के आरोप में इन पर मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा एक और FIR जो दर्ज की गई है वो 10 अन्य लोगों के खिलाफ की गई है, वो आर्म्स एक्ट में दर्ज की गई है, जो उस इलाके में रहते थे जहां की दंगा हुआ। कर्नाटक सरकार ने लिंगायत समुदाय को अलग धार्मिक समूह की मान्यता देने का फैसला किया है। ये खबर भी लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है।
लेकिन गेंद अभी केंद्र सरकार के पाले में है।
जी, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने सिफारिश कर दी है केंद्र सरकार को। अब जो है गेंद मोदी सरकार के पाले में,
और ना करे तो दिक्कत, करे तो दिक्कत,
यही सियासत है संदीप जी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को चारा घोटाले के एक और मामले में दोषी करार दिया गया है। ये सुर्खी है इंडियन एक्सप्रेस की। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया है। लालू को सजा देने पर फैसला कल होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की खबर तस्वीर समेत कई अखबारों में सुर्खी बनी है।
बनना ही था, इतनी बड़ी खबर हो गई है।
जी, मुलाकात के बाद चंद्रशेखर राव ने कहा कि उन्होंने ममता के साथ संघीय मोर्चा बनाने की बात की।
हालांकि आपने ध्यान दिया होगा, ममता बनर्जी ने साफ साफ कुछ ऐसा कहा नहीं है जो जिससे लगे कि तीसरा मोर्चा किस तरह से शक्ल लेने वाला है आने वाले दिनों में।
जी, दिल्ली के वसंत कुंज थाने पर JNU छात्रों का प्रदर्शन कल दिन भर, ये खबर जो है वो TV चैनलों में भी छाई रही और अखबारों में भी आज छाई हुई है। छात्रों का प्रदर्शन है, उन्होंने यौन उत्पीड़न के मामले में विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी की मांग की।
अच्छा,
है
प्रोफेसर विश्वविद्यालय के ही
हैं? जी, प्रोफेसर विश्वविद्यालय के हैं, कई छात्रों ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मोदी सरकार के खिलाफ पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं रखे जाने की खबर को भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापा है। 2G केस में प्रवर्तन निदेशालय ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। निचली अदालत ने पूर्व टेलीकॉम मंत्री A Raja, DMK नेता कनीमोझी समेत 17 व्यक्तियों को बरी कर दिया।
2G मामले में कोई खबर बहुत दिनों बाद सुनने को मिली है।
हाँ, बहुत दिनों बाद सुनने को मिली है, क्योंकि सरकार ये देखा जा रहा था कि सरकार इसके खिलाफ ऊंची अदालत में फैसला कब करेगी, और प्रवर्तन निदेशालय ने वो पहल कर दी है। तलवार दंपति की रिहाई को भी चुनौती मिली है। राजेश तलवार और नूपुर तलवार को निचली अदालत ने जो है बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने फैसले के खिलाफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हेमराज की पत्नी के खिलाफ नोटिस जारी कर दी।
दिनेश जी, मुझे याद आता है कि हेमराज की पत्नी ने ये दलील दी कि जब किसी को आपने दोषी नहीं ठहराया, बरी कर दिया सबको, मतलब हत्या तो हुई नहीं, जबकि हत्या हुई, तो हत्या किसने की ये पता लगे, इसलिए उन्होंने ये दोबारा अदालत का दरवाज़ा
खटखटाया है।
बहुत शुक्रिया दिनेश उप्रेती समाचार पत्रों की सुर्खियाँ विस्तार से बताने के लिए।
मर्द के कोई चीज होवे ना तो तुरंत दब जाता है, औरत में कहाँ आदमी आता है, कहाँ कोई सुनवाई है।
BBC शी, हम निकले हैं औरतों की बात सुनने, उनके मुद्दे उनके सरोकार जानने। मैं दिव्या आर्य जाऊंगी पटना से विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर से नागपुर, राजकोट और जालंधर, और सुनाऊंगी वो आवाजें जो आप तक नहीं पहुँचती। सुनिएगा BBC हिंदी रेडियो पर दिन भर और नमस्कार भारत में हमारी विशेष पेशकश BBC शी।
श्रोताओं, आपको याद होगा पिछले ही हफ्ते की बात है, बिहार से एक खबर आई थी। खबर ये कि कथित मोदी चौक के विरोध में दरभंगा में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इस खबर में कितनी सच्चाई थी जानने के लिए पटना से हमारे सहयोगी मनीष शांडिल्य दरभंगा पहुंचे और आपके लिए ये रिपोर्ट लेकर आए हैं।
दरभंगा के भदवा गांव का जो नरेंद्र मोदी चौक अभी चर्चा में है, दरअसल यह कोई चौक नहीं है। यह सड़क किनारे एक निजी मगर विवादित जमीन पर लगा बोर्ड है। यह बोर्ड लगवाया है तेज नारायण यादव ने, जो कि खुद को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता बताते हैं। यहीं पर 15 मार्च की रात को अज्ञात लोगों ने तेज नारायण के पिता रामचंद्र यादव और भाई भोला यादव पर हमला किया। यह घटना बीते दिनों सुर्खियों में इस कारण रही क्योंकि तेज नारायण और उनके घर वाले यह आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चौक का बोर्ड लगाने के बाद बीते करीब 2 साल से जो विवाद चला आ रहा है उसी के कारण ये हमला हुआ।
8 बजे 2 बाइक पर 5 आदमी आ गए। आते ही बोला प्रधानमंत्री चौक किसने रखा भाई, गाली गुली देने लगे। इसी बात के ऊपर वो हमारा गिरवान पकड़ा। उसके बाद 9 बजे ये लोग प्लान रच के आ गया।
तेज नारायण के मुताबिक ऐसे ही एक विवाद में 2016 के दिसंबर में उनके एक भाई की भी हत्या हो चुकी है। घटना के बाद पुलिस ने तेज नारायण की पत्नी सुशीला देवी के बयान पर FIR दर्ज की, जिसमें घटना की वजह जमीन विवाद बताया गया है। लेकिन सुशीला के मुताबिक उन्होंने भी पुलिस को बताया था कि घटना की वजह बोर्ड के नाम से जुड़ा विवाद है, जिसे पुलिस ने दर्ज नहीं किया। घटना के बाद 16 मार्च की रात दरभंगा SSP सत्यवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही थी।
घटना अज्ञात अपराधकर्मियों को बेस कर कराई गई है। बोर्ड को लेकर विवाद की बात बताई जा रही है, वो कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। बोर्ड अभी भी पूर्व 1.5 साल पूर्व लगा है।
भदवा गांव से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर पिलखवारा गांव है। इसी गांव के मोहम्मद वारिस हुसैन के बेटे पर घटना को अंजाम देने का आरोप तेज नारायण लगा रहे हैं। वारिस की बेटी कैसर परवीन बताती हैं,
हमारा कोई नहीं था, सिर्फ अब्बा था, वो बीमार था, ये सब फंसाया जा रहा है। वो बहुत पुलिस आ रहा है, वो रोज 22 को आया, ये सब आ रहा है, परेशान सबको कर रहा है, लेडीज सबको।
हालांकि दरभंगा के SSP सत्यवीर सिंह महिलाओं को परेशान करने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। मनीष शांडिल्य, BBC, भदवा गांव, दरभंगा।
और अब एक खबर खेल जगत से।
खेल समाचारों के साथ में सूर्यांशी पांडे। आइए आपको लेकर चलते हैं फुटबॉल के मैदान पर, जहां पर रूस में इस साल होने वाले फुटबॉल विश्व कप में पहली बार होगी वीडियो रेफरिंग। जी हां, फुटबॉल के अंदर और बाहर से हो रहे विरोध के बावजूद रूस में इस साल होने वाले विश्व कप में वीडियो सहायक रेफरी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने यह जानकारी जारी की है। उन्होंने नोटिस को रेफर करते हुए कहा है कि विश्व कप में पहली बार इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा और इसको मंजूरी मिल गई है। फुटबॉल के नियमों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ बोर्ड यानी कि IFAB ने 2 सप्ताह पहले ही ज्यूरिख में इस टेक्नोलॉजी को हरी झंडी दे दी थी और फीफा परिषद ने उसे अंतिम मंजूरी दी। विश्व कप 14 जून से 15 जुलाई के बीच रूस में खेला जाएगा। इस दौरान इस टेक्नोलॉजी का उपयोग यह पता करने के लिए किया जाएगा कि गोल हुआ है या नहीं और पेनल्टी देनी चाहिए या नहीं। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी लाल कार्ड को लेकर भी फैसला करेगी और अगर किसी खिलाड़ी को गलती से सजा मिल गई है तो उसमें सुधार करेगी।
और एक नजर दिल्ली स्टूडियो की हमारी घड़ी पर। भारत में दिल्ली में कुछ ही देर में बजने वाले हैं, 2 मिनट बचे हैं, 7:00 बजेंगे, उससे पहले जब हम करेंगे कार्यक्रम का समापन। लेकिन चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं दिनेश उप्रेती से।
BBC समाचार। हिंदी के वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह का कल दिल्ली में निधन हो गया, वो 83 वर्ष के थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग तस्करों को कड़ी सजा देने की वकालत की है, जिसमें मौत की सजा भी शामिल है। अमेरिकी राज्य एरिजोना में एक ड्राइवरलेस कार की टक्कर में एक महिला की मौत हो जाने के बाद उबर ने ड्राइवरलेस कार की टेस्टिंग निलंबित कर दी है। करोड़ों यूजर्स का डाटा चोरी होने की खबरों के बाद कल अमेरिकी शेयर बाजारों में फेसबुक का शेयर लगभग 7% गिरकर बंद हुआ। एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति चुने गए व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो देश की सैन्य ताकत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह के हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते। संकट से जूझ रहे पश्चिम अफ्रीकी देश माली में चल रहे संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में कनाडा भी शामिल होगा। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया अभिमन्यु साह ने। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।